greet you all in the precious name of our Lord Jesus Christ.
मैं प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम का अभिनंदन करता हूं. मैं भाई फ्रैंक हूं. मैं जर्मनी से हूं और एक सच्चा गवाह हूं इस बात का कि प्रभु ने हमारे समय में, खुदावंद ने हमारे समय में क्या क्या किया. और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अपनी गवाही आपसे शेयर करना चाहता हूं और सारी दुनिया में. और इस चीज की उम्मीद करता हूं कि हर एक इस बात को समझेगा, उन सारी बातों को जो इस समय में अच्छी तरह से बताना चाह रहा हूं. मैं लूका रहित रचित सुसमाचार से पहले अध्याय से और पहली आयत से पढ़ूंगा. क्योंकि जो जो चीजें उसने अपने हाथ में ली और जो जो बातें हमने विश्वास करी और जो जो बातें शुरू से आंखों के गवाह और सेवकों ने हमें बताई, और जो के इस चीज के गवाह थे और सेवक थे, उन्होंने हम सबको बताई. और ये मुझे भला लगा कि उन चीजों की भली प्रकार से पूरी जानकारी जो कि शुरू से है वो मैं आपको लिखूं और एक उसका सीधा सीधा ब्यौरा आपको दूं. और यहां लुका रचित सुसमाचार में वो बता रहा है कि कई लोगों ने उसका ब्यौरा पहला दे चुके हैं. क्योंकि उसके बारे में बताया जा चुका है और ये बोला भी जा चुका है और सुना भी जा चुका है. वो कहता है कि जो उसके आंखों देखे गवाह थे और वचन के आंखों देखे गवाह थे. ये सिर्फ यही काफी नहीं है कि हम आंखों के देखे हुए गवाह हों और या सेवक हों. और खुदा जो है, परमेश्वर जो है, वो अपनी भविष्यवाणी पूरी करता है, तो हमें प्रभु के सेवकों की आवश्यकता होती है जो कि ना सिर्फ काम करने वाले हों, ना सिर्फ सेवकाई करने वाले हों, वो उसके गवाह भी हों और जो के परमेश्वर के वचन के, खुदा के वचन के अंतर्गत उसका ब्यौरा दे सकें. और यहां पर वो बड़े साहसिक बातों का वर्णन कर रहा है. यहां पर बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया जा रहा है. कोई यह शायद यह सोचे कि यह बहुत है, यह तो बहुत 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 ज्यादा है और यह एक मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा है ऐसी बातें करना. और अगर खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा और अगर वो किसी को चुनता है, क्योंकि वो संपूर्ण खुदा है, वो पूरक खुदा है और उसको हर चीज की पूरी जानकारी है, उसकी पूरी पूरी जानकारी है. और जिनको वो चुनता है, जिनका वो चुनाव करता है, वो उसके बारे में उनको पूरा बताता है. और मैं अब आपके सामने पढ़ना चाहूंगा पहला यूहन्ना और उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत से. और जो हमने बहुत शुरुआत से ही, आरंभ से ही जो हमने सुना और हमारी आंखों ने देखा और हमने उसको देखा और अपने हाथ से उसको हैंडल किया, यानी कि परमेश्वर का वचन, खुदा का वचन, खुदा का कलाम। और खुदा के अपने गवाह पुराने और नए नियम दोनों में पाए जाते हैं। और जब कभी खुदा कोई काम करता है या कुछ कहता है तो वो अपने वचन में उसका बयान करता है कि वो किसको यूज कर रहा है, और वो किसी ना किसी को जरूर यूज करता है। हम लोग उद्धार के कार्यक्रम के बारे में, खुदा का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है उद्धार का, उसके बारे में, और जैसा कि प्रेरितों के काम में और उसके पहले अध्याय में, और प्रभु ने कहा कि ये मेरे गवाह हैं, और यशाया 43 में उसने कहा ये मेरे गवाह हैं, और दूसरा पत्रस और पहला अध्याय और यहां पर प्रेरित कहता है और उसने ये बताया कि यहां हमने लोगों की मनगढ़ंत कहानियां इस बारे में कि प्रभु यीशु मसीह बड़े पावर में और शक्ति में आने वाला है, यह मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, पर हम तो उसकी महिमा के गवाह हैं। हम उसकी महिमा की गवाही देते हैं। और 18वीं आयत में, और यहां पर प्रेरित कहता है, और ये आवाज जो आकाश से, आसमान से आई, हमने सुनी, और हम उस पहाड़ के ऊपर भी उसके साथ थे। अगर हम परमेश्वर के साथ की बात करते हैं और बाइबल की भविष्यवाणियों की बात करते हैं, और अगर हम ऐसी सेवकाई की बात करते हैं जो कि प्रभु ने बनाई हो, उसने लगाई हो, तो हमको परमेश्वर के वचन में, खुदा के वचन में वापस जाना जरूरी है कि क्या उसके बारे में कोई वादा किया गया, कोई वचन में उसके बारे में वादा किया गया, और वो किस प्रकार से वो वादा पूरा होता है परमेश्वर के वचन में। अगर हम मनुष्यों के इतिहास के बारे में पुराने नियम में देखें और पढ़ें, जब भी कोई खास बात, कोई खास कार्यक्रम होना होता है, तो प्रभु किसी न किसी को सामने लाता है, किसी न किसी को इस्तेमाल करता है, और उस समय उसको सामने लाता है। हम भविष्यद्वक्ताओं के बारे जानते हैं, हम इनोक के बारे में जानते हैं, हम नोह के बारे में जानते हैं, हम अब्राहम के बारे में जानते हैं, हम मूसा के बारे में जानते हैं, हम एलाइजा के बारे में जानते हैं, एलिया के बारे में, और सारे भविष्यवक्ताओं के बारे में जानते हैं, जिनको कि परमेश्वर ने, खुदा ने इस्तेमाल किया, उनसे बात की और अपनी आवाज उनको सुनाई, और उनके साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित करके उसने उनसे बात करी और उनको उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। तब हम ये भी जानते हैं, क्योंकि इससे पहले कि परमेश्वर कुछ करे, आमोस की किताब उसके 3:7 आयत में कहता है, खुदावन परमेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं करता जब तक कि वो उसके बारे में अपने भविष्यद्वक्ताओं को ना बता दे। और अब्राहम एक ऐसा भविष्यद्वक्ता था, और उत्पत्ति की किताब में 18वें अध्याय में हमको इस चीज की जानकारी मिलती है कि उसने उस भविष्यद्वक्ता के बाद अपने दूत भेजे, और 17वीं आयत में, और उसने कहा कि मैं जो करने जा रहा हूं वो तेरे से कैसे छुपा, तेरे से कैसे गुप्त रख सकता हूं, अगर तेरे को बताना हूं तब तक तुझे ना बताऊं। और उत्पत्ति 19 और परमेश्वर अब्राहम के साथ साथ था, और उसने अपनी इस बात को स्थापित किया और ये बात को उसने जो वचन दिया था उसको उसने इसहाक के अंदर स्थापित किया, पूरा किया। अगर हम पुराने नियम में देखें तो नए नियम का जो इतिहास है कलीसिया का, वो पहले से पुराने नियम के अंदर में उसकी भविष्यवाणी की गई थी। और नए नियम में और ये सारी बातें पहले से ही उस पुराने नियम में बता दी गई थी। और यहुन्ना जो था वो एक वचन के द्वारा, वाचा के द्वारा दिया गया एक भविष्यद्वक्ता था। और मलाकी के तीसरे अध्याय में और उसकी पहली आयत में हम इन दोनों मुख्य भविष्यवाणियों के बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में, पहली आमद के बारे में बताता है। वहां पर एक है जो कि वन में, जंगल में पुकारता है। ये बहुत जरूरी आवश्यक है क्योंकि प्रभु अपने जो दिए हुए वचन हैं, वो जो भी वचन उसने दिए, वो जो भी परिस्थितियां आनी थी वो उनके बारे में पहले से बताता है। और जब यहुन्ना एक पुल बांधने का काम करता है, एक जोड़ने का काम करता है, पुराने नियम को नए नियम से जोड़ने का, उन वचनों को, उन वादों को पूरक होते हुए दिखाने का काम यहुन्ना ने किया, यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। और उसने मसीहा की तरफ दिखाया कि देखो ये है मसीहा, ये है वो मेमना जो प्रभु ने भेजा। और प्रार्थना के द्वारा जो आपको बताया जा रहा है, प्लीज उसको वचन के द्वारा उसका पालन करें, उसको सिर्फ सुने ही नहीं। प्रभु ने ये सारी चीजें पहले से ही बताई हैं, सही समय पर और सही तरीके से। मैं इसमें अपने आप को भी शामिल करता हूं, बड़े नम्रता से इस प्रोग्राम में मैं अपने आप को भी नम्रता से शामिल करता हूं क्योंकि मैं इसका एक हिस्सा, एक अंग बन चुका हूं और कई सालों से, कई वर्षों से मैं कर रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मेरा जो परिवार जो है ये उस समय से आ रहा है जबकि सुधार का समय चल रहा था और सच्चाई के सुधार का समय चल रहा था, जब मार्टिन लूथर, जिसको प्रभु ने इस्तेमाल किया क्योंकि उसको सुधारक के लिए इस्तेमाल किया, और मेरे दादा परदादा जो थे, और वो भी फ्रैंक नाम उनका, ये मेरा परिवार का जन्म जन्मांतर का नाम है। और लूथर्स जो थे और ये विश्वास करते थे, ये वो परमेश्वर के वचन में विश्वास करते थे और ये उनको बताया गया और उस समय बताया गया। और फिर मैंने बैप्टिस्ट चर्च में मेरा बपतिस्मा हुआ, पर मेरा सफर वहां खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, पर मुझे सब कुछ पता चलता रहा और फिर मैं फुल गॉस्पल में सुनने में आया और जो मेरे समय में आया। और 1949 में मुझे पहला इस चीज का एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता है वचन के अनुसार। तब उस समय मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक ऐसा उत्साह आया कि मैं परमेश्वर की सेवा में जाऊं। तब एक आदमी अमेरिका से आया, पॉल हरमन नाम का एक व्यक्ति आया और हैम्बर्ग जर्मनी में, और वो शायद हॉलीवुड के अंदर में एक बहुत बड़ा मनुष्य था, बहुत ही ज्यादा बहुत जाना पहचाना मनुष्य था, और हॉलीवुड से उसका संबंध था, पर अमेरिका की गवर्नमेंट ने उसको उसकी उसकी सेवकाई को ग्रहण किया कि वो जाकर नागासाकी में जो बम्बार्डमेंट हुआ था उसकी परिस्थितियों को, उसकी बातों को वो रिकॉर्ड करे और उसके उसके बारे में रिपोर्ट दे। और उसने इस बारे में प्रचार किया कि प्रकाशित वाक्य में जो पूरक होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में क्या लिखा है। ना सिर्फ अमेरिका की के जनरल मैकार्थी जो था, जो के वहां का राष्ट्रपति भी था, और उससे किसी ने बात करी, तो उसने एक मीटिंग, प्रार्थना सभा अटेंड करी, जिसमें कि भाई विलियम ब्रैनम उसके एरिया में, उसके उसके मोहल्ले में ये मीटिंग कर रहे थे, और तब उसने अपनी गवाही दी कि परमेश्वर यानी खुदा ने उसके जीवन में क्या किया। अब मैं कुछ सालों के बारे में यहां से आगे जाऊंगा, फिर 1953 में उस समय जब मेरा चुनाव हुआ, मैं तो शायद 20 साल का भी मुश्किल से था, तब मैं एक नवयुवक था, तब फिर मैं एक सेवकाई के कार्य के लिए मेरा चुनाव किया गया और पेंटिकॉस्टल चर्च में जर्मनी में, और 1955 में एक बहुत खास, एक बड़ा अनोखा वर्ष था मेरी जिंदगी का, मेरे जीवन का, और मैं मुझे ऐसा सुअवसर मिला कि मैं ब्रदर ब्रैनम की प्रार्थना सभा मीटिंग में, जो जर्मनी में हुई थी, और 10 दिन की मीटिंग को मैंने अटेंड किया, और मैं बड़े उत्साह से, बड़ी प्रसन्नता से इस बात को कह सकता हूं और गवाही दे सकता हूं कि जो मैंने देखा उन 10 दिनों में वो ऐसा था जो कि प्रेरितों के काम के अंदर लिखा है, हुआ है और लिखा हुआ है, उससे कुछ कम नहीं था, बिल्कुल वैसा ही मैंने होते हुए देखा, और वो ऐसे ही अद्भुत और अनोखे काम जिनका के वर्णन प्रेरितों के काम में किया गया, वो मैंने उस समय उन 10 दिन की मीटिंग में होते हुए देखे, और लोग ऊंची आवाज में उत्साह से उत्साहित हो रहे थे कि बाइबल के जो दिन हैं ये दोबारा आ गए हैं, ऐसा लगता है बाइबल के दिन दोबारा वापस आ गए हैं। इब्रानियों 13:8 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कल आज और कल और युगानुयुग एक सा ही है, और ये सारी चीजें जो वहां देखी भाइयों और बहनों, मैं उनका गवाह हूं, मैंने आंख से देखा, कान से सुना, मैं वहां था जबकि एक लड़की वहां लाई गई जो कि 11 साल की उसकी उम्र थी, और वो पैदाइश से ही अंधी थी, और एक क्षण में मैं वहीं था जब लोगों ने, जो लोग कैंसर से मर रहे थे, और वो स्ट्रेचर के ऊपर, बिस्तरों के ऊपर लाए गए लिटा करके, और वहां पर एक प्रोफेसर था, जब भाई ने, ब्रैनम ने जब उससे कहा कि तुम्हारे ऊपर एक प्रकाश है और प्रभु तुम्हारी हीलिंग कर रहा है, तुमको चंगाई दे रहा है, और ब्रदर ब्रैनम ने बड़ी अथॉरिटी के साथ, बड़े प्रभाव के साथ इस बात को कहा कि प्रभु की शक्ति के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो नासरत का है, नासरी है, और करीब 18 से 20 हजार लोगों के सामने इस ये जो बंदा था, ये जो 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 प्रोफेसर जो था, ये एक स्ट्रेचर पे मरण सैया पे लेटा हुआ था, और ये अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके उठ गया और चलने लगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं गवाह हूं और एक ऐसी सेवकाई जो मेरे सामने पूरी हुई, मेरी आंखों के सामने से गुजरी, और फिर मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा हुई कि मैं अब इस मिनिस्ट्री के बारे में ज्यादा जानूं। कि ऐसा हुआ कि मैंने भाई ब्रैनम को मैंने जाके होटल की लॉबी में, होटल के बरामदे में जाकर के, होटल के हॉल में जाके उनसे बात की, और इससे पहले कि मैं अपना हाथ उनसे मिला चुकूं, और वो रुक गए और उन्होंने कहा कि तुम प्रभु के सेवक हो, सुसमाचार के सेवक हो, और तुम वहां खड़े थे, गेट के पास खड़े थे, और प्रभु ने उनको ऐसे विजन दिखाए, और तब उन्होंने मैंने तब उन्होंने कहा, तब उन्होंने कहा, मैंने देखा कि ना उन्होंने इब्रानियों 13:8 पढ़ा, उन्होंने यूहन्ना 14 और उसकी 12वीं आयत, जिसमें प्रभु ने कहा कि जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे और उससे भी ज्यादा करोगे और बड़े बड़े काम करोगे। और उसने ऐसा सुसमाचार भी पढ़ा, यूहन्ना 5 और 19वीं आयत और उसकी 20वीं आयत, कि पुत्र स्वयं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, पर वो कर सकता है जो वो अपने पिता को, जो अपने पिता को करते हुए देखता है वैसा ही पुत्र भी कर सकता है। ब्रैनम जो थे वो ना केवल एक भविष्यवक्ता थे, वो सेवक भी थे, और वो वादा किए हुए वचन के द्वारा वादा किए हुए एक प्रचारक थे और भविष्यवक्ता थे। और जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु ने जो जो काम किए हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कि मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभु ने उसने अपने वचन के द्वारा क्या क्या किया। और मैं ऐसा मूर्खता नहीं करूंगा कि प्रभु ने मेरे जनरेशन में, मेरे समय में क्या क्या किया। और जैसा ब्रदर ब्रैनम कह रहे थे कि हम प्रभु की हमेशा प्रशंसा करते हैं कि उसने पिछले दिनों में, गए बीते दिनों में परमेश्वर ने, प्रभु ने क्या क्या किया, इसके बारे में बड़ा बखान करते हैं, पर हम ये बात भूल जाते हैं कि वो आज क्या कर रहा है, आज के समय में, वर्तमान में प्रभु क्या कर रहा है, इस पे हम ध्यान नहीं देते। और 1958 में मैंने वॉइस ऑफ हीलिंग की कन्वेंशन अटेंड करी थी, जो बाय गॉर्डन लिंडसे ने अरेंज करी थी, और डेलस टेक्सास में, और उन्होंने ये किताब लिखी, विलियम ब्रैनम, एक सेवक जो कि प्रभु की तरफ से भेजा गया, ये किताब उन्होंने लिखी थी, और ये वाली जो किताब थी, ये वाली जो थी, ये यहां पर पब्लिश हुई। फिर मैंने वो कन्वेंशन अटेंड करी, फिर मैंने 1958 वाली वो कन्वेंशन अटेंड करी, तब मुझे पता लगा और ये शाम की जो मीटिंग थी उसमें करीब 200 इवेंजलिस्ट आए थे, और भाई ब्रैनम जो थे वो वहां मेन मुख्य स्पीकर थे, मुख्य वक्ता थे, और बहुत वहां पर ऐसा संभव था कि उन लोगों की मिनिस्ट्री थी, और ये बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग थे जो और आए हुए थे। पर शाम की जब عبادت ہوئی، شام کی جب میٹنگ ہوئی، جب برادر برہنم کا نمبر آیا، جب ان کو بولنا تھا، اس سمے آدمی سننے والا یہ آسانی سے دیکھ سکتا تھا کہ وہاں پر خدا کا، پرمیشور کا، پربھو کا ایک بڑا خاص کام ہو رہا تھا اس میٹنگ کے اندر جب برادر برہنم نے بولنا شروع کیا اور یہ چیز سامنے آئی، اور برادر برہنم نے ویژنز دیکھے، اور جب سے جب وہ بولے اور جن جن کے لیے دعا کری، اور ڈیلس ٹیکساس میں جب پربھو نے میری آنکھ کھولی اور مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو سیوکائی ہے یہ دوسری سیوکاؤں میں سے ایک سیوکائی نہیں ہے، اس کا سیدھا سیدھا سمبندھ اس بات سے ہے کہ خدا پرمیشور ہمارے سمے میں کیا کر رہا ہے، یہ اس کا سمبندھ، اس سیوکائی کا سمبندھ اس سے ڈائریکٹ ہے۔ اور اسی سمے میں، اور جب میں ٹی ایل آسبرن سے ملا اور رابرٹ سے ملا اور جتنے اور بڑے بڑے ایوینجلسٹ تھے ان سے ملا، جن کا نام آپ لے سکتے ہیں، جو دنیا بھر میں مشہور تھے، 1960 میں جب ٹی ایل آسبرن جرمنی آئے تو وہ انہوں نے مجھ سے ملاقات کری، تو میرے ایک چھوٹے سے گھر میں آ کر انہوں نے میرے سے بات چیت کری، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنا ایک ذمہ دار نیوکت کروں گا یورپ کے لیے، اور اس سمے ایک جرمن منشیہ کے لیے اس سمے میں ایک یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک بڑی گاڑی اس کو مل جائے گی، اتنا سارا پیسہ مل جائے گا، اتنی ساری اس کو سمپتی مل جائے گی، سمردھی مل جائے گی اور خیاتی مل جائے گی، اور اس سمے میں تے پاس تو ایک گورنمنٹ جاب تھا جرمنی میں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سمے میں نے بھائی برہنم کے جو سرمن تھے، جو وکتویہ تھے وچن کے، اس کا میں نے انواد کرنا شروع کرنا آلریڈی شروع کر دیا تھا۔ میرے پریو، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، مجھے وہاں پر مجھے اس بات پہ کھڑا ہونا پڑا، مجھے پتا تھا کہ یہ جو سیوکائی پربھو مجھے دے رہا ہے یہ پربھو کی اور سے ہے، اور پربھو نے یہ پربھو کی اور سے ہے۔ تب ایک سمے آیا، تب 1962 کا سمے آیا، اور سوموار کا دن تھا، اور 2 اپریل کو اس سے پہلے کہ بھور یا صبح سامنے آئے یا بھور کا سمے شروع ہو، یا میں اپنی بائبل سامنے رکھ کے آپ سے اس بات کو، پربھو کے وچن کو سامنے رکھ کے بول رہا ہوں، میرے سامنے انگلش اور لوترن جرمن بائبل دونوں رکھی ہیں، کہ پربھو کے سامنے میں بات بول رہا ہوں کہ وہی ان سب کا نیائے کرنے والا ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس کا کوئی گیان نہیں تھا، پر ایسا ہوا، اور 116 لوئیزن اسٹریٹ میں، اور دوسری منزل پر میں صبح اٹھا اور میں کھڑکی کے پاس گیا اور میں نے پردے ہٹائے اور دیکھا، بائیں اور دائیں کو ہٹا کے دیکھا، ایک نیا دن میرے سامنے نکل کے آ رہا تھا، اور آسمان میں، اور اس کھڑکی سے، اور میں نے ایک چھوٹی سی دعا کری، اور اس دن کو میں نے پربھو کو سمرپت کیا، اور 2-3 گھنٹے تک، اور دو تین گز یا تھوڑی سی دور میں آگے گیا، اور داہنے ہاتھ سے ایک زور کی آواز، اور بڑی زور کی آواز پربھو کی، जहां के उसका एक एक शब्द इस प्रकार से बोला गया, इस तरीका से बड़े ही सावधान से क्लियरली बोला गया जर्मन लैंग्वेज में, और प्रभु ने कहा मेरे सेवक अब तेरा समय, अब इस शहर के लिए तेरा समय अब समाप्त होने वाला है, अब मैं तुझे दूसरे नगरों में दूसरे देशों में जा भेजूंगा जहां पर तू जाकर मेरे वचन का प्रचार करेगा। और उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपने पैरों पे गिर पड़ा और मेरा बायां हाथ जो था वो जो चटाई थी उसके ऊपर कारपेट पे आ गया और मैं गिरा, और कुछ समय के बाद ही मैं संभल पाया और तब मैंने धीरे धीरे करके चलना शुरू किया, और फिर और मैं खड़ा हो सका कि मैं आगे खड़ा हुआ और मैं खिड़की से देख रहा था और मेरा जिस्म कांप रहा था, और मैंने तब ये शब्द कहे, हे प्रभु, प्रभु वो मुझे क्यों सुनेंगे, उनके पास तो इतना सब कुछ है, वो तो तैयार नहीं होंगे कभी भी, मुझे तू भेज रहा है वो मुझे कैसे सुनेंगे। अब प्रभु ने दोबारा बोला, मेरे सेवक ऐसा समय आने वाला है कि वो जरूर जे जरूर सुनेंगे, क्योंकि एक अकाल बहुत जबरदस्त अकाल आने वाला है, और तब उनके बीच खड़ा होगा और तब तू भोजन का बंटवारा करेगा, भोजन को बांटेगा और भोजन देगा। और मैं पूरी तरीके से नहीं समझ पाया, पर 1961 में 1962 में जबकि क्यूबा की लड़ाई चल रही थी और बर्लिन की लड़ाई और बर्लिन और जहां जो रशिया के जो टैंक थे और गोलाबारी, ये दोनों एक दूसरे को और रशियन और बर्लिन एक दूसरे को आमने सामने खड़े हुए थे कि कभी किसी समय पर भी और बहुत बहुत ही दुर्घटना, बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि 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 उस समय लड़ाई का माहौल था, तो मैंने जो खाने पीने की सामग्री थी, जो राशन था, उसको मैंने पूरी कोशिश करके कि प्रभु ने तो मुझे अकाल के बारे में बताया है, तो मैंने इस तरीके की खाने पीने की और यूज करने की जितनी सामग्री थी वो सारी मैंने इकट्ठा करनी शुरू कर दी। पर ऐसा हुआ आगे चल करके कि कोई भी अकाल नहीं पड़ा, कोई अकाल नहीं आया। और तब ऐसा हुआ, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये क्या, मैं तो कोई अकाल भी नहीं आया, मैंने तो इतना सब कुछ जमा करके रखा, अब क्या होगा, अब मैं क्या क्या करूं, अब तो मेरे लिए जीना भी दुर्लभ है। और तब उसने कहा, प्रभु ने मुझसे कहा कि अब मुझे मैं फ्लाइट पकड़ करके अब जाऊं और जा करके ब्रदर ब्रैनम से इसके बारे में बताऊं, उनको इन्फॉर्म करूं कि ये क्या हुआ, तब कि वो इसके बारे में मुझे बताएं। मैं 31 दिसंबर कि जो आखिरी दिन या आखिरी रात थी उस दिन तक मैं भी इंतजार नहीं करना चाह रहा था। तो 3 दिसंबर सोमवार का दिन था, मैं भाई ब्रैनम के साथ और ब्रदर ब्रेंसवुड और ब्रदर सॉथमैन, वो हम सब एक ही कार में जा रहे थे और भाई ब्रैनम गाड़ी चला रहे थे और मैं उनके साथ अगली सीट पे बैठा था, और वहां से वो मुझे लेकर गए थे जहां मैं ठहरा था, और फिर हमने खाना खाया और भाई ब्रैनम ने उन मीटिंग्स के बारे में, सभाओं के बारे में मुझे बताया। पर एक उस समय आया जब हमने अपनी बातचीत को जारी रखा, तब मैंने ब्रदर ब्रैनम को बोला, भाई ब्रैनम मैं आपसे अब कुछ पूछना चाहूंगा, और उनका दाहिना हाथ इस प्रकार से उठा और उन्होंने कहा, भाई फ्रैंक, क्या मैं आपको बता सकता हूं कि प्रभु ने आपसे क्या कहा? क्या मैं बताऊं? और मेरे मित्रों, आप शायद इस बात का यकीन ना करें, आप भरोसा ना करें, विश्वास ना करें, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि और भी वहां लोग थे, मौजूद थे, जो दूसरे देशों से गए थे। ब्रदर बेंसवुड, ब्रदर सॉफ्टमैन, वो लोग वहां थे उस समय जब ब्रदर ब्रैनम ने हाथ उठा करके मुझे रोका और मुझसे कहा कि तुम वहां पर जर्मनी, फ्रांस, कई जगह से लोग आए हुए थे और उन्होंने सुना था और उन्होंने गवाही सुनी, और जो मैं आपको अब गवाही दे रहा हूं, सुनिए। ब्रदर ब्रैनम ने शब्द व शब्द, वर्ड बाय वर्ड, शब्द बाय शब्द, वो सारी चीज मेरे को वो जो परमेश्वर ने मुझे जर्मन भाषा में बोला था, वही बात एकदम भाई ब्रैनम ने मुझे अंग्रेजी भाषा में बोलकर बताई। और ये सब बताने के बाद, और तब उन्होंने कहा, भाई फ्रैंक, तुमको शायद गलतफहमी हुई, आपको इस बात की, आप सोच रहे थे कि ये जो अकाल आएगा, ये क्या खाने पीने की चीजों का और राशन का, पानी का अकाल आएगा, तो इसीलिए आपने इतना सारा राशन पानी और सारा कुछ बाजार से खरीद के इकट्ठा कर लिया कि अकाल में आप उसका इस्तेमाल कर पाओ? ऐसा नहीं है। अकाल जो है ना, है अकाल जो है, वो इस चीज का है, आएगा या आने है कि प्रभु का जो वचन है उसका इकट्ठा किया जाना है, क्योंकि उसके सुनने का अकाल आने वाला है, खाने पीने की सामग्री का नहीं है। और ये जो बातें हैं, ये जो राशन है, ये जो चीजें हैं, बहुमूल्य चीजें, ये उन टेप्स के ऊपर अब अवेलेबल हैं, ये वो भोजन है जिसका अकाल आने वाला है, और ये टेप्स के ऊपर सारा मौजूद है। फिर 1958 से, सितंबर महीने से, सितंबर 1958 से, तब से मैंने भाई ब्रदम के सारे जो सरमन से, जो उनके वचन थे, प्रवचन थे, वो मेरे पास आने लगे, और मैंने उनको जर्मन लैंग्वेज और उन जर्मन भाषा में मैंने उनका अनुवाद किया। इस प्रकार से मैं बढ़ता गया, इस प्रकार से मैं उस वचन में बढ़ता गया, और तब प्रभु ने मेरी सहायता करी। और तब उसने कहा, दिसंबर 3 को, और ब्रदर ब्रैनम ने मुझसे कहा कि भाई फ्रैंक, आप अभी इंतजार करो, अभी वेट करो, जब तक तुम्हारे पास बाकी के टेप, यानी बाकी का ये आत्मिक भोजन तुम्हारे पास जब तक ना पहुंच जाए, तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना। इसलिए प्रभु के अनुग्रह से हमें समझना चाहिए कि जब प्रभु ने मुझसे बातचीत करी, तब प्रभु का जो सेवक था, जिस प्रकार से उन्होंने भाई ब्रैनम से बात की थी, उसी प्रकार से प्रभु के दूत ने मुझसे बातचीत की, जैसे उनको बोला था कि तुम प्रभु को, ब्रदर ब्रैनम को बोला था कि तुम जेफरसन में रहना, तुम यूरोप और इधर उधर के दौरे मत करना। तब ये बात स्वर्ग दूत ने तीन बार ब्रदर ब्रैनम से कही। और तब ब्रदर ब्रैनम का क्या कार्य था, उन्होंने वो जो भोजन था वो टेप्स में बोल बोल के स्टोर किया। और जब 1963 में, जबकि सात मोहरों के बारे में जो प्रभु को ब्रदर ब्रैनम ने बताया 1963 में, तब मैं उनके साथ था, उन्होंने मुझे बताया, और जनवरी 1963 में कि वो विद फैमिली अपने परिवार के साथ टूसों चले जाएंगे। भाई ब्रैनम को सिर्फ मैं सरमन से नहीं जानता, मैं तो उनके घर में रहा हूं, मैं उनके साथ रहा हूं, मैं उनके साथ कार में सफर किया, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ सांसारिक रूप से उनको नहीं जाना था बल्कि आत्मिक रूप से जाना था। और यह सारा का सारा प्रकाशन जब मुझे मिला और जब प्रभु ने उनको सात मोहरों का विवरण दिया, तब उससे उनको प्रोत्साहन मिला। तो उनकी एक मीटिंग में और मई 7, 1946 में, क्योंकि उस समय किसी ऐसा कोई भी नहीं था, चाहे वो बिली ग्राम हो, ओरल रॉबर्ट हो या और भी कोई इवेंजलिस्ट था, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ब्रदर ब्रैनम, जिनके पास एक दूत स्वर्ग से आया और बोला, और 7 मई 1946 को, और मैं इस जीत का मैं पूरी तरीके से विश्वास करता हूं कि एक दूत जो जकरिया के लूक पहले के हिसाब से जकरिया के पास भी एक दूत आया था और उसने उसको वचन दिया कि एलिजबेथ उसको एक पुत्र जन्मेगा और जो प्रभु के पहले जाएगा और उसका रास्ता तैयार करेगा, उसकी राह तैयार करेगा। जिस प्रकार से एक दूत मरियम के पास आया और जिसके बारे में लूका की इंजील पहले में लिखा है कि वहां पर जो वचन जो था वो ये बता रहा है कि मसीहा का जन्म होगा और सारे नए नियम में जब भी कोई अनोखी अलौकिक बात होती थी, इसका मतलब है कि प्रभु वहां पर कोई ना कोई अद्भुत कार्य करना चाह रहा है, कोई ना कोई अद्भुत काम करना वहां चाह रहा है प्रभु। आप नए नियम में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर दूत ने पतरस के लिए दरवाजे खोले कि पतरस वहां से निकल सके, और उसने ये बदला कि तू शमौन को बुला और उसको बोला कि वो तेरे को बताएगा और वो तेरे को वचन बताएगा कि, और दूत आया और पौलुस के पास एक दूत आया कि क्या होगा और प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब में जाएं, और एक दूत आया और यूहन्ना के पास भी एक, और आयल जो आयल था पतमस में टापू में, वहां पर भी एक दूत आकर के यूहन्ना से उसने बातचीत करी और उसको बताया कि क्या क्या अब होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या क्या होगा, इसका प्रकाशन दिया और प्रकाशित वाक्य उसके 2वें अध्याय में ये बताया गया कि प्रभु कि उसने अपने दूत को भेजा। आमीन। और एक 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 दूत भेजा, जबकि कोई खास घटना कोई अलौकिक बात होती थी तभी प्रभु अपने दूत को भेजता था, जिस प्रकार से लूका के 2 अध्याय में बताया गया। और जबकि लोग वहां स्तुति गान करते हुए दूतगण गाते थे और बैतलहम में गाते थे और तब वहां पर उजाला ही उजाला दिखाई देता था और वहां पर दूत आकर के इस चीज का आह्वान करता था कि प्रभु का के जन्म बैतलहम में हुआ और खास तौर पर और दानियल नबी को उन चीजों के बारे में पहले से उसका आह्वान, उसका प्रकाशन, उसकी भविष्यवाणी पहले से बता दी गई कि आगे चलकर क्या होने वाला है। और प्रभु हमेशा हमेशा भविष्यद्वक्ता को बता देता है। और मेरे प्रियो, प्रभु को किसी से भी उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और कभी भी उस चीज को ना नकारें जो प्रभु कर रहा है। और प्रभु का सारा काम और आ रहा है और पूरा होता जा रहा है, और जो वचन किया हुआ वचन है, वादा किया वो, और उसके ऊपर परमेश्वर काम कर रहा है। और खास तौर पे अगर एक वादन वादा किया हुआ वचन के द्वारा भविष्यद्वक्ता आया और अगर परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया तो हमें पता लग जाएगा, और उस समय हमारा काम है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका सत्कार करें, उसको माने, और हमको पता होना चाहिए कि हमारे समय में परमेश्वर क्या कर रहा है, उद्धार के काम के लिए क्या कर रहा है। अब हमको थोड़ा और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमको पता है कि ब्रदर ब्रैनम दिसंबर के महीने में 1965 में भाई ब्रैनम को प्रभु ने अपने पास बुला लिया, और उसी दिन 1997 में, इन दिनों में परमेश्वर ने कभी भी प्रभु जो था वो 1965 से ही खत्म नहीं हो गया, वहीं पर ही नहीं काम रुक गया, उस वहां से तो काम शुरू हुआ। 24 दिसंबर जब बाइबल मेरे सामने रखी है, मैं जर्मनी में रहता हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला, कि ब्रदर ब्रैनम को क्या होने वाला, मुझे ये नहीं पता था कि हमारे बीच में से वो उठा लिए गए हैं, जो कि वो दिसंबर महीने को उठा लिए गए हैं 24 को। पर मैं सच्चाई से बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे, मैं ऐसा नहीं हूं कि मुझे बड़े सपने आते हैं या मैं बड़े बड़े दर्शन देखता हूं, पर मैंने ये देखा कि मैंने भाई ब्रैनम को बादलों पर ऊपर ऊपर और ऊपर उठते जाते हुए देखा, और मैंने उस दर्शन में देखा, और मुझे नहीं पता था, और मुझे नहीं पता था कि यही वो समय था जबकि वो इस दुनिया को छोड़ के गए थे। मैंने बादलों के इस तरीके से वो उठाए गए। मैंने तब कहा, भाई ब्रैनम, आप तो मनुष्य के पुत्र नहीं हैं, और मुझे नहीं पता, मैं कह रहा था कि आप क्यों जा रहे हैं इस प्रकार से, और मुझे नहीं पता था कि उसी समय, खास उसी क्षण, ब्रदर ब्रैनम को ऊपर उठा लिया गया था। जब मुझे पता लगा, ब्रदर आर्नब्रस्ट ने बताया कि भाई ब्रैनम हमारे बीच नहीं है, तब ऐसा दुखद क्षण शायद ही मेरे सामने कोई हुआ होगा। मैं बड़ा दुखी हुआ, और ये बड़ा दुर्घटनाग्रस्त हो गया मैं, और मैं ना दुखी हो गया, मेरा मन बड़ा उदास हो गया। पर इससे भी ज्यादा दुख मेरे को उस दिन हुआ जिस दिन मैं उनके बरियल के दिन उनके उस जगह पर गया जहां उनका कफन रखा था, और मैं वहां था, और मैंने देखा कि वो कॉफिन बॉक्स में उनकी बॉडी लेट रखी है, और फिर मैंने देखा ये भी देखा कि उनका जो कॉफिन बॉक्स जब भूमि में रखा गया, कब्र में रखा गया, वो भी मैंने अपनी आंख से देखा। तब मेरे लिए ऐसा हुआ कि जैसे सारा संसार उल्टा पलटा हो गया, सब कुछ ही खत्म हो गया, मैं दुख से इतना भर गया कि हे मेरे प्रभु, अब क्या होगा, ये क्या हो गया, तेरी क्या ये सेवकाई खत्म हो गई, तेरा सेवक तो चला गया, अब क्या होगा प्रभु। तब दो घंटे तक रोता रहा। मैंने उनके गाने गाने के प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हुआ, मैं तो रोता रहा, मेरा दिल उदास हो गया। और उसी समय शाम को, और मैं जब अपने होटल में आया, और मेरे ऊपर स्वर्ग की का ऐसा माहौल मेरे दिल के ऊपर आया, और उसने कहा, मेरे सेवक, अब तेरा समय प्रारंभ होता है, और हिम्मत मत हार, और जो स्टोर किया हुआ जो आत्मिक भोजन है, और मैं आगे को झुक भी गया और मैंने अपने दिल पे हाथ रख लिया इस प्रकार से, और ये नहीं कहना चाहता मैं वापस वहां से, मैं वापस आके जर्मनी, मैंने अपने जो मेरा सरकारी नौकरी थी मैंने उसमें नोटिस दे दिया जो गवर्नमेंट जॉब था, और मैं उसके बाद से मैंने उसके बाद उससे पहले तक मैं प्रीचिंग और गवर्नमेंट जॉब दोनों इकट्ठे करता था, पर अब की आकर के मैंने वहां रिजाइन दे दिया और अब मैं पूरे तरीके से प्रभु की सेवकाई में आ गया। और मैंने अपने भाइयों से बोला और भाइयों से जो अमेरिका में बोला था, अंश भाई ग्रीन से बोला कि अब मुझे भाई ब्रैनम के जो सरमंस हैं मुझे उन मेरे को सारे चाहिए, क्योंकि मैं अब उनको जर्मन भाषा में और दूसरी भाषाओं में उनको प्रिंट करूं, उनकी प्रिंटिंग कराऊं, और इस अब और सो दैट क्यों इस समय ये जो फल था जो जोड़ के रखा गया था संभाल के, अब उसका बंटवारा किया जाए, अब उसको दिया जाए। तब मेरा जो ये सिर्फ खाली मेरी सोच नहीं थी, ये तो ये था कि एक वो एक ऐसा समय था कि प्रभु ने ये सब कुछ बताया के रखा था, और जब वो समय आ गया तब उसने मुझे बता दिया कि अब क्या होना है और अब क्या करना है, और तब उसने मुझे उसकी पूरी समझ भी दे दी, और जो के भविष्यवाणी जो सेविकाई थी भविष्यद्वक्ता की उसके द्वारा जो उसने किया, अब उसने मुझे समझाना शुरू किया। और यह कितनी अद्भुत बात थी कि प्रभु ने यह काम किस प्रकार से शुरू किया, और आप इस बात को शायद ना समझें कि, और मैं ये कहूंगा मैं जे ये काम करने के लिए किसी ने भी एक डॉलर मैंने किसी से नहीं मांगा, किसी से मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ प्रभु पे विश्वास किया और सिर्फ उस पे डिपेंड रहा, किसी के आगे मैंने हाथ नहीं फैलाया। और इस प्रकार से हम प्रभु का ये वचन हम जितनों से हो सका उतनों से हमने मीटिंग अरेंज कर करके सभाएं अरेंज कर करके ये काम करना शुरू किया, और 1966 में जर्मनी में और दूसरे यूरोप के देशों में भी किस प्रकार की गवाही दी के हमने क्या क्या देखा क्या क्या सुना इस सेवकाई के अंदर, और प्रभु ने क्या क्या किया। ब्रदर ग्रीन ने एक्स ऑफ द प्रॉफिट नाम की किताब लिखी, वो जो उन्होंने चीजें देखी और सुनी उनका वर्णन उसने इस किताब में दिया गया, ये उनकी मिनिस्ट्री थी। एक और किताब है जिसमें एक दूसरे भविष्यद्वक्ता जो साउथ अफ्रीका जाके विजिट करता है वो दूसरे लेखक ने लिखी है। इस प्रकार से बहुत सारे जो भाई थे जिन्होंने जो कि आंखों देखे गवाह थे, उन्होंने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया कि प्रभु ने हमारे समय में क्या क्या किया। तो 1966 से ये वाली मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, ये काम स्टार्ट हुआ सिर्फ ना केवल जर्मनी में, ना सिर्फ यूरोप में, पर 1968 से 1978 तक मेरे पास एक 20 मिनट का रेडियो का प्रोग्राम था, और लक्समबर्ग से जो कि बहुत ही प्रभावशाली रेलवे रेडियो स्टेशन था, जिसमें कि 120 मिलियन लोग जो थे वो उसको सुनते थे, ना सिर्फ जमीनी तरीके से बल्कि पर जर्मन जो भाषा थी ये पूरे यूरोप के इस कॉन्टिनेंट में, इस प्रभाग में जर्मन भाषा सबसे ज्यादा बोली और सुनी जाती है, और दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं, पर वो इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं बोली और सुनी जाती जितनी कि जर्मन भाषा। और 119 मिलियन जर्मन बोलते थे तब, जो जर्मन बोली जाने वाले देश थे वहां पर इसका प्रभाव एकदम पड़ने लग गया। अब मैं आपके साथ क्या चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगे, क्यों आपके ऊपर ये प्रभाव नहीं होना चाहिए कि हम आपके सामने किसी इंसान का, मनुष्य का बखान कर रहे हैं। मैं आपके सामने सिर्फ बाइबल का जो उद्धार का तरीका वो रखना चाहता हूं, और मैं मूसा से मेरा कोई सरोकार नहीं, अब्राहम से सरोकार नहीं, पॉल से सरोकार नहीं, ब्रैनम से सरोकार नहीं। मेरा तो ये सरोकार है कि प्रभु ने इस समय में हमारे जीवन में क्या क्या किया, उसने क्या क्या किया हमारे जीवन में, ये बात। और प्रभु ने, और इस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, जो कि उसका भेजा हुआ भविष्यवक्ता था, उस हाँ, इसी प्रकार से यही बात भाई ब्रदर ब्रैनम के बारे में भी हम कह सकते हैं। 1950 में जब भाई ब्रैनम जब ह्यूस्टन टेक्सास में वो प्रचार कर रहे थे और करीब 8 लोगों के सामने प्रचार कर रहे थे, तब उनसे जब बोला गया उनकी मिनिस्ट्री के बारे में, तब वो लोग जबकि लोग इस चीज के वर्णन कर रहे थे, इसका बखान कर रहे थे कि अब तो वो जो अद्भुत और अलौकिक और पवित्र आत्मा के काम खत्म हो गए, जब भाई ब्रैनम बोले को बुलाया तो जब वो आए तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ इसलिए नहीं खड़ा हूं कि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं तो उसके बारे में बताने आया हूं जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे जिम्मेदारी दी है, वो अपने आप इस चीज की गवाही देगा कि क्या हो रहा है। मिस्टर किपरमैन जो के उस समय का खास काम करते थे इस मामले में, और उनके पास ये वाली पिक्चर भेजी गई कि ये जो निशान है ये क्या है, इसके बारे में बताएं। और भाइयों, ये खास जो जॉर्ज लेसी जो जनवरी 29 को 1950 में, तब उन्होंने ये बताया कि एक ऐसा मनुष्य कि ये वो इंसान था, ये इंस्पेक्टर था, जो कि गवर्नमेंट की साइड से, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स साइन करता था जो बहुत ही खास होते थे, तब उसको उन्होंने नियुक्त किया कि वो इस वाले डॉक्यूमेंट को पढ़े और समझे और साइन करे, क्योंकि ये खास था। शायद आप विश्वास ना करें, दिसंबर 1968 में जब मैं एक कन्वेंशन में गया, टूसन में गया अमेरिका में, और मैं पहले वाशिंगटन डीसी में रुका, तब मैं वहां पर जाके इस जगह को ढूंढने लगा, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने इसका वर्णन किया था कि ये जो पिक्चर है ये वाशिंगटन डीसी में लगी हुई है, और करीब 11:15 बजे का समय था सवेरे का, जब मैं वहां पर पहुंचा और मैं उस जगह को पा लिया। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, और वहां हॉल ऑफ आर्ट नाम का एक हॉल है, और ये पिक्चर, मैंने ये पिक्चर अपने आंख से देखी और मैं इसका आंखों देखा गवाह हूं। और 1968 में वॉशिंगटन डीसी में मैंने हॉल ऑफ आर्ट में ये पिक्चर अपने आंख से देखी, ये गवाही है। और द बंदा, वो मनुष्य जिसने मुझसे बात करी, उसने कहा, उसने मुझे बताया, शायद आप जर्मनी से आ रहे हो और आप इस चीज में इतने ज्यादा इच्छुक हो इसके बारे में जानने में, देखने में, क्योंकि ये एक ऐसी पिक्चर है, ये तो कोई ज्यादातर लोगों के इच्छा पूर्ति नहीं करती, लोग इसमें ज्यादा इच्छुक नहीं है। उसने देखा, ये ड्रॉअर देख रहे हो टेबल का, एक दिन ये जो तस्वीर है जिसको आप अभी टंगा हुआ देख रहे हो, एक दिन इसकी जगह ये होगी, एक दिन ये यहां पहुंच जाएगी। पर मैं बताना चाह रहा हूं कि एक और ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सुपर नेचुरल क्लाउड था, अलौकिक चिन्ह था, जो 28 फरवरी 1963 को दिखाया गया। और अगर आप अच्छी तरह से देखें, जो आप देखें कि एक प्रभु के चेहरे का एक अक्ष, एक इमेज, एक नक्शा उसके अंदर पाया जा रहा है। और ये करीब इतने किलोमीटर लंबा था। फिर मेरे पास लाइफ मैगजीन है, ये 17 मई 1963 की है, और ये पिक्चर इस, और आप देख सकते हैं एक हाई क्लाउड, एक रिंग, और जिसके बारे में बड़ा अद्भुत रिंग देखा गया। और यहाँ पर एक लेखक ने इसके बारे में बताया कि इतनी हाइट के ऊपर तो कोई मॉइस्चर होता ही नहीं, कोई पानी हो ही नहीं सकता, कोई पानी की स्थापना हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये अलौकिक चीज है, और यही वाला ये साइंस वॉइस मैगजीन थी उसमें। और 19 अप्रैल 1963 को ये आया, और ये बताया गया कि ये किस प्रकार से आया, और पहले जब ये किस प्रकार से बादल बनना शुरू हुआ और किस प्रकार का रूप उसने बाद में ले लिया। और यहां बता रहा है क्योंकि नॉर्दर्न एरिजोना पे ऊपर ये अद्भुत बादल नुमा चिन्ह दिखाई दिया। पहले ये रिंग के शेप में, गोले के शेप में आया, और फिर धीरे धीरे एरिजोना के ऊपर आया, और वहां सनसेट माउंटेन के पास वहां पर ये आया, 28 फरवरी 1963 में आया। ये उन सारी चीजों के बारे में बता रहा है, उसकी ऊंचाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी। और ये बातें ब्रदर ब्रैनम ने अरेंज नहीं करी थी, ये कोई झूठी घटना नहीं थी जिसके बारे में पहले से इंतजाम कर लिया गया हो और बाद में उसका वर्णन कर दिया गया हो, प्रचार कर दिया गया हो। ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के निशान थे। हम इन सब चीजों के बारे में, हमको पता होना चाहिए कि प्रभु ने क्या किया। ये लोग कहते हैं कि पहले तो बहुत कुछ किया, पर ये नहीं बताते प्रभु अब क्या कर रहा है। आज मैं बता रहा हूं, और मैं ये गवाह होते हुए आपको बता रहा हूं कि हमारे समय में प्रभु ने क्या किया। अब मैं आपके सामने ब्रदर ब्रैनम का एक सरमन था, 2 सितंबर 1959 में उन्होंने प्रचार किया था, उनके अपने मुख से आप सुनिए, और ये सब सुनिए, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु के पहले आगमन को बुलाने के लिए भेजा गया, उसी प्रकार से तुमको एक संदेश दिया गया है जो प्रभु की दूसरी आमद यानी कि दूसरे आगमन के लिए लोगों को तैयार करेगा। ये बातें प्रभु ने ब्रदर ब्रैनम के मुख से कहलवाई, और ये बात, और ये उनका कहा हुआ है कि ये नहीं कि मैं ये नहीं कि मैं ब्रैनम उसके प्रभु के दूसरी आगमन को स्थापित करूंगा, नो नहीं, बल्कि वो जो वचन है, वो जो प्रचार है, वो जो मैसेज है, वो प्रभु की दूसरी आमद को दर्शाएगा, वो तैयार करेगा, मैं नहीं तैयार करूंगा। क्योंकि 2 जून 1933 में 11 जून को उन्होंने अपनी इवेंजलिस्टिक कैंपेन चलाई और वहां पर, और उसके बाद 300 लोगों ने प्रभु को अपने आप को दिया और कई लोगों ने बपतिस्मा लिया, करीब 4000 लोग वहां थे। तब ब्रदर ब्रैनम वो ओहायो रिवर में खड़े थे और जिस प्रकार से यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉर्डन यर्दन नदी में खड़ा था, उसी प्रकार से ब्रदर ब्रैनम ओहायो नदी में खड़े थे। वो ब्रदर ब्रैनम ने अरेंज नहीं किया, ये कोई पहले से बनाई हुई घटना नहीं थी, ये घटना घटी। और जिस प्रकार तब जब वो सत्रहवें कैंडिडेट को बपतिस्मा देने लगे, तो एक अद्भुत लाइट, एक सितारे की तरह बड़ी चमकदार लाइट दिन के टाइम में आकर ऊपर खड़ी हुई, और जो सारा के सारी भीड़ वहां पर थी उन सब को वो दिखाई देने लगी, और उसके बाद में, और उन सब ने इस अलौकिक अद्भुत प्रकाश को देखा, और उस लाइट ने, उस अद्भुत रोशनी ने, ये जो शब्द अभी मैंने आपके सामने पढ़े, ये आवाज उसमें से निकल कर आई। जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु के पहले आगमन के लिए भेजा गया, उसी प्रकार तुमको एक संदेश दिया गया है, तुमको एक मैसेज दिया गया है, जो कि प्रभु की दूसरी आगमन को, दूसरी आमद के लिए तैयार करेगा। और ये प्रभु का वाचा किया हुआ वचन है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा अपरा, ये मैं संदेश से पढ़ रहा हूँ, और ये बातें आपको इसको सामने रख के कह रहा हूँ। और ये कि जो लिखा हुआ संदेश है, वो जब प्रकाशित हुआ, और अब हम उस लिखे हुए उस वर्ड को, उस वचन को अब अपनी जिंदगियों के अंदर हम देख रहे हैं, हम उस उद्धार के प्रोग्राम को अपने सामने देख रहे हैं। अब मैं सिर्फ इस बारे में नहीं बोल रहा, मेरे पास अब मैं इस बात का प्रूफ आपको दे रहा हूं, मैं इस बारे में मैं करीब 10 साल तक 1955 से 1965 तक ब्रदर ब्रैनम को जानता था। मेरे पास ये 23 लेटर्स हैं ब्रदर ब्रैनम के, जो उन्होंने इतने सालों में मेरे को लिखे हैं। ये सारी कॉरेस्पॉन्डेंस मेरी ब्रदर ब्रैनम के साथ हुई है, और ये सारी बातें वो मेरे को लिख के देखते थे। 19 मार्च का लेटर है 1964 का, और ये 1965 का है कि भाई फ्रैंक, प्रभु के नाम में आपका अभिनंदन हो। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए मैं क्यों दिखा रहा हूं ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि कई लोग हैं जो कि इस चीज से ईर्ष्या रखते हैं कि प्रभु ने, क्योंकि लोगों, प्रभु ने मेरे साथ मेरी मिनिस्ट्री में क्या किया है, और ऐसा कोई बात नहीं कि मैं अपने बखान के लिए या अपनी प्रशंसा के लिए या अपनी ख्याति के लिए इस बात को कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। और ब्रदर भाई ब्रैनम के साथ 1962 से होते हुए, तो मैं एक जर्मन पत्रिका थी वॉइस ऑफ हीलिंग की, के हैमबर्ग में। यहाँ पर आप मेरी तस्वीर देखते हैं 1963 मार्च से ऑन द पहले पन्ने पर बाई फ्रैंक की तस्वीर एक अलौकिक एक्सपीरियंस फिर भाई ब्रैनम के बारे में बता रहा है यहाँ पर अकाल के बारे में बता रहा है। ये जो घटनाएं मैंने आपको बताई ये मैं कोई आपको कोई कहानी नहीं बैठ के सुना रहा, ये देखिए मेरे सामने प्रूफ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये कोई जरूरी नहीं है पर ये सिर्फ कि मैं आपको कहानियां सिखाऊं क्योंकि मैं अगर प्रभु का सच्चा सेवक हूं तो मैं आपको कहानियां नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको गवाही के साथ प्रूफ के साथ ये सारी चीजें इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रभु ने इस समय में जिसमें हम रह रहे हैं इसमें प्रभु ने क्या किया और ये बहुत जरूरी समय ये बहुत आवश्यक समय हमारे लिए है। और जितने कार्य करने वाले लोग हैं और जितने प्रभु के सेवक हैं चाहे वो अपने आप को कुछ भी कहें चाहे वो पेंटिकॉस्टल कहें चाहे फुल गॉस्पल कहें चाहे कुछ भी कहें चाहे किसी चर्च के कहें पर डिनोमिनेशन के भी कहें चाहे वो कैरिस्मेटिक हों पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं जिससे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे आए कि प्रभु ने इस वादे को हमारे समय में पूरा किया। दो 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 वादे हैं, एक वो वादा जो के प्रभु की पहले आमद पे हुआ, पहले जो जॉन द बैप्टिस्ट यहुन्ना बपतिस्मे देने की सेवकाई में हुआ मलाकाई तीन के हिसाब से और यशाया 40:3 के हिसाब से हुआ। पर दूसरा प्रॉमिस सुनिए वो मलाकाई 4 के हिसाब से कि एक दिन आएगा धरती जो है वो आग से जल जाएगी, भयंकर दिन आएगा और उसके लिए आयजाया उसके लिए यशाया 13 आप पढ़े, जोएल पढ़े 2 अध्याय और इसफानिये पढ़े और बहुत सारे और पुराने नियम में पढ़े और मलाकाई 4 अध्याय को पढ़ाओ। वहां पर बता रहा है एक ऐसा भविष्यद्वक्ता जो एलिया की मिनिस्ट्री की तरह होगा और वो प्रभु के भयंकर दिन बड़े दिन के पहले आएगा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो दिन है और वो जो समय है वो रहेगा। हम उस समय से 2000 साल पहले निकल आए हैं यूहन्ना की सेवकाई से, ये वो नहीं है। और नए नियम में इस पहले प्रवचन में यहां पर जो सेवक है प्रेरित बता रहा है यहां बता रहा है कि प्रभु का आत्मा जो लोगों को दिया जाएगा और 20 आयत में बता रहा है कि सूरज जो होगा वो काला पड़ जाएगा और परमेश्वर के बड़े और भयंकर दिन के आने से पहले। और आप पूरे के पूरे नए नियम में पढ़ सकते हैं कि पत्रस और पौलुस ने इसके बारे में पहला थिस्सलुनीकियों और उसके 5 अध्याय वहां पर वो बोल रहा है और के पर उन समयों के और के बारे में मौसमों के बारे में तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है पर तुम जानते हो। दूसरी आयत में कह रहा है कि प्रभु का दिन जो वो चोर की ना आएगा और जो यहां पर प्रेरित जब बात कर रहा है उस समय यह बता रहा है कि प्रभु का जो दिन है वो आगे आएगा, अभी आ नहीं गया, आने वाले समय में आएगा भविष्य में। और हमें इस बात को समझना है कि जो दो बात जो बहुत सारे वादे किए गए हमको ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार से ये पूरा हुआ। यहां हमको बताया जा रहा है कि प्रभु का दिन चोर की नहीं आएगा। और दूसरा पत्रस और उसके तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं और यहां प्रभु के दिन के बारे में बता रहा है और यहां वो बता रहा है और दूसरा पत्रस तीसरे अध्याय और आठवीं आयत में बता रहा है कि हे प्रियो, ये मत भूल जाना कि प्रभु के लिए एक दिन 1,000 वर्ष के बराबर है और 1,000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ये मत भूल जाना। ये हमको समझना है कि क्योंकि और दसवीं आयत में बता रहा है दूसरे पर प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा और उस दिन आकाश जो है वो बड़ी बड़े 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 घोर आवाज के साथ जाता रहेगा और उसकी जो चीजें हैं वो और वो इतने तेज गर्मी के द्वारा पिघल जाएंगी और धरती जो है और धरती के जो काम हैं वो भी जलाए जाएंगे। मेरे पितरों, ये नया नियम और भविष्यवक्ता और प्रेरित ये सब एक ही भाषा बोलते हैं। इसलिए जो पुराने का भविष्यवक्ता नए के प्रेरित इन्होंने एक कितनी जगह बोला और प्रभु के दिन के बारे में बोला और उद्धार के दिन के बारे में बोला और ये भी बताया कि प्रभु का दिन किस तरह आएगा है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां लिखा है मत्ती 17 के बारे में। मैं सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगा मत्ती 17 और वो हमारा प्रभु बता रहा है उस वचन के बारे में के जब कभी भी इज़राइल की बात आती है तब हमेशा दो भविष्यवक्ताओं की बात होती है क्योंकि यरूशलेम में जब हमारे बारे में बताया जाए जब अन्य जातियों के समय का वर्णन किया जाता है प्रभु के बड़े और प्रकोपी दिन के आने के पहले तब वो कहता है कि तब मैं एलिया को भेजूंगा। कौन से दिन के पहले? जब प्रकोपी और उस बड़े दिन के आने के 17 और उसके 11वीं आयत में और उसके चेलों ने उससे पूछा 10वीं 11वीं में कि ये लोग जो ज्ञानी लोग क्यों कहते हैं कि एलिया पहले आएगा क्यों? हाँ या और अब देखिए कि 11वीं आयत में क्या लिखा है। प्रभु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो अगर हम प्रभु के वर्णन किए हुए दिए हुए हम दूसरों के पास ना जाएं, हम प्रभु के वचन पर जाएं, हम प्रभु के वचन से ढूंढें, हम ये देखें कि प्रभु ने क्या कहा और बाइबल बता रही है और एक अच्छे तरीके से बता रही है। और प्रभु ने कहा और उनसे कहा एलिया तो जरूर पहले आएगा और सब चीजों को वापस लेकर जाएगा, जहां से शुरू हुई थी वहीं वापस लेकर जाएगा, रेस्टोर करेगा और इस प्रकार। और उसने कहा मुझे पता है हम पूरी कोशिश करते हैं हमारा समय समाप्त हो रहा है भाइयों, यस प्रभु का आना बहुत जल्दी है और हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि ये प्रभु का क्या है काम आज की डेट में, प्रभु क्या कर रहा है। और अगर हम चीजों को भूल जाएं, अगर हम चीजों पर ध्यान ना दें, और अगर जो आपके कि अगर हम सिर्फ अपने सेविकाई का बखान करते रहे, तो मैं आपसे कब उस दिन अगर हम अपने काम का बखान करते रहेंगे तो प्रभु के सामने जब वो आके बताएंगे क्या क्या हमने किया तुम्हारे लिए, क्या क्या मैंने नहीं किया आपके लिए, तो उस दिन प्रभु क्या कहेगा कि मेरे नजरों से दूर हो जाओ, तुम जो भलाई कर सकते थे नहीं करी, जो तुम्हें करना था वो तुमने नहीं किया। ये प्रभु का समय है, ये आपके लिए और आपके लिए और आपके लिए और प्रभु के लोगों के लिए है ये वो समय, ये सब वो टाइम है, ये उस समय का ये वो समय है जो के प्रभु के जो भविष्यवक्ताओं प्रेरितों ने बोला और जो उसके वादा किए हुए थे, ये उनके द्वारा जो उसने वादे किए उनका पूरा होना इस समय में लाजमी है। और उसने जो कलीसिया बनाई, प्रभु यीशु ने जो कलीसिया बनाई, और जो वो कोने का पत्थर है, और जो पहला और आखिरी है, अल्फा और ओमेगा है, ये जिसने शुरू किया, ये वो समय है, ये वही समय है, ये जिस प्रकार एलिया ने वो 12 पत्थर उठाए और वो उसने उसी प्रकार से ब्रदर ब्रैनम ने उसने 12 प्रेरितों को का जो मैसेज था, वचन था, प्रेरणा थी, उसको इकट्ठा किया और उसने 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 भविष्यवाणियों तक के द्वारा और प्रेरितों के द्वारा जो कि प्रचार किया गया उसको इकट्ठा करके मिला करके उसने बाकी वचन को रिस्टोर कर दिया। और मैं जानता हूं कि आप कृपा करके इन बातों को भूल ना जाएं, इनको नजरअंदाज ना कर दें। और अब मैं और ये मेरे आगे बड़ा सुअवसर था कि ये मैं गवाही आपके सामने दे सकूं, और क्योंकि मैं एक सच्ची गवाही हूं, ये नहीं कि परमेश्वर ने 50 और 60 साल पहले क्या क्या किया, मैं इस चीज की गवाही दे रहा हूं कि और कर रहा है परमेश्वर जो आज कर रहा है, और इस संसार के लिए जो कर किया उसने, मैं उसकी गवाही देता हूं। मैं आगे बढ़ चढ़ के नहीं बता रहा हूं, और मैं उस चीज को जो प्रभु ने प्रकाशन दिया मैं उसके बारे में बता रहा हूं, और मैं उस संदेश का और जो इस समय का संदेश है, और मैंने 6000 6500 सरमन आज तक कर दिए, और मैंने बहुत पता नहीं कितने मिलियन माइल मैंने जाकर प्रचार किया है, और मैंने भाई ब्रैनम के जो सरमन हैं उनको मैंने अनुवाद किया और इनका अनुवाद किया, और हमारे मिशन सेंटर में जो यहाँ जर्मनी में क्रेफिल्ड में, और इसमें 12 लैंग्वेजेस में, और प्रभु ने जिसने मुझे तैयार किया कि इन के अलग अलग भाषाओं का ट्रांसलेट कर सकूं, और इस बात का मुझे अवसर दिया कि ये बताए कि वो इस समय क्या कर रहा है और क्या कर रहा है प्रभु। और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है। मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, और जितने भाई सेवकाई वाले हैं जो सारे संसार में हैं, मैं जो बर्लिन में मेरे दोस्त हैं और यूजिन बर्ग, यूविन फेटन और बाकी जो भाई हैं इन अमेरिका में हैं, और बहुत सारे भाई हैं, प्रियो ये समय है, और हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम प्रभु के लिए जहां भी जाना हो हम वहां तक जाएं और सेविकाई करें, हम वचन से मिला करके मैं ऐसा प्रचारक नहीं बनूंगा जो कि अपने मन की प्रचार करे, मैं तो प्रभु के जो प्लान है उसका उद्देश्य है, मैं उसका एक अंग हूँ, उसका अंग बन रहा हूँ, बनना चाह रहा हूँ। और हमारे भाई प्रेरिगिन जो तूसे में अरिजोना में और दूसरे भाई जो भी हैं यूएसए में और हमारे भाई जो न्यूजीलैंड में हैं, हमारे भाई जो सिडनी जैक्स हैं, जो साउथ अफ्रीका के जो सारे लोग हैं, ये सारे जो भाई थे जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया, जिसको प्रभु ने दिखाया कि हमारे समय में प्रभु ने क्या किया उसने अपने वचन के हिसाब से। मैं अब एक आखिरी खास बात आपसे इस बात को इस तुलना में कहते हुए कह रहा हूं और सारे प्रचारकों के बारे में और भाई ब्रैनम से, कि मैं बड़ी नम्रता से कह रहा हूं पर सच्चाई से कह रहा हूं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि प्रभु ब्रदर ब्रैनम वादा किया हुआ प्रचार बोले गया भविष्यवक्ता बोला गया एक भविष्यवक्ता था, प्रभु का सेवक था, प्रभु ने उसने इतिहास लिखा, उसने ब्रदर ब्रैनम के द्वारा 1946 से इस जबरदस्त जो अलौकिक घटनाओं की जो कड़ियां लगी, ये जो काम हुए वो ये कैसे थे, एक ही थे जो 1948 से 1948 49 50 से लेके और आगे आगे बढ़ते गए और 50 में और जो कि आगे प्रोत्साहित हुए। आप जो आप इस बात को शेयर कर रहे हैं लोगों से सिखा रहे हैं और सेवक हैं और जो ब्रदर ब्रैनम टाइम से स्टार्ट हुए, क्योंकि क्या आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या था, क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था ऐसी मिनिस्ट्री को लाने का, प्रभु का क्या उद्देश्य था, क्यों लाया ऐसी मिनिस्ट्री? इसलिए नहीं कि हम उसको भूल जाएं, बल्कि हम उसको पूछें, क्योंकि लॉर्ड प्रभु तू क्या कर रहा है, तू इस समय क्या कर रहा है, तो हमको बता, प्रभु आपको बताएगा। हे प्रियो, समय निकलता जा रहा है, समय भागता जा रहा है, मैं तो और भी बहुत सारी बातें आपको बता सकूं, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको पता, मैं तो यहां पर रह रहा हूं और मैं तो यरूशलेम से भी मेरा संपर्क है और जगह जगह से संपर्क है और बाइबल की भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणियों के द्वारा क्या क्या हो रहा है इसके बारे में मैं जानता हूं, पर मैं प्रभु के अनुग्रह से कह रहा हूं कि मेरा प्रभु के साथ संबंध है, प्रभु के साथ मेरा संपर्क है और प्रभु की आत्मा के साथ मेरा संपर्क है और इसीलिए उसकी जो बुलाहट थी, उसके बुलाए जाने के द्वारा जो मैंने समझा और जो मुझे पता लगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो मैं आपको बता जा रहा हूं और प्रभु बता रहा कि एक समय आएगा कि एक ऐसा अकाल पड़ेगा कि प्रभु जो है एक ऐसा समय पड़ेगा उसके वचन के सुनने का अकाल पड़ जाएगा और ये जो अनंत काल का वचन है प्रभु का और ये हमको समझने की जरूरी है और मत्ती 24 में और उसके बारे में बोल रहा है कि हमको वो भोजन हमको देगा कि हम वो वाला जो भोजन है वो आगे बांट सकें और संसार के छोर छोर तक देश देश तक यही वाला संदेश भेजें जिस प्रकार से पौलुस को इस्तेमाल किया गया और इसी प्रकार हम वही वाला वचन वो जो पौलुस को दिया गया था वही वाला हम वचन उसी प्रकार से भाई ब्रैनम को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और हम पर मुझे प्रभु ने डायरेक्टली भी इस चीज के लिए बुलाया और मेरा जो कनेक्शन है, संबंध जो है वह प्रभु के साथ डायरेक्ट है और इस समय के मैसेज को मैं प्रीच करूं और इस तरीके से प्रभु के अनुग्रह से ये मेरे लिए पॉसिबल हुआ कि मैं बैलेंस में रहूं कि प्रभु का जो वचन और जो मैसेज है इन दोनों के मिलावट में जो बैलेंस है इन दोनों के मेल में जो मेल है मैं उसके बारे में आपको बता सकूं और क्योंकि प्रभु का जो वचन है ये पूरा होता जा रहा
है।
आपको एक ऐसा सुअवसर मुझे परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मिले, क्योंकि सारे देशों में और सारे संसार में और सब लोग आशीषित हों और प्रभु की जो ब्राइड है वो उन लोगों में से बाहर निकल आए जो कि सही नहीं है, जो त्रुटियां और गलतियां उनमें से बाहर आए और जो बातें बताई गई जो सही करी गई इस मैसेज के द्वारा और जितना डॉक्ट्रिन ये सब कुछ जो है जो सही नहीं है वो उसको साइड में करें और वचन के साथ मिल जाएं, वचन के साथ जुड़ जाएं और वापस इस वचन में आ जाएं और वापस उसमें बहाल हो जाएं और इस प्रकार से परमेश्वर खुदा हमको इस्तेमाल करेगा और तब हमको उसकी दुल्हन बताएगा और उसके लिए और उसका उसकी आमद जो है वो है वो जरूर है और एकदम मकबूल है और उसकी आमद जरूर है। और जैसा एक पेतों के काम 1:51 में लिखा, 1:11 में लिखा, यही यीशु जो जिसको तुम बादलों में जाते हुए देख रहे हो इसी प्रकार से आएगा। इसी तरह लूका भी उस चीज की गवाही देता है और जिस प्रकार से तुम शारीरिक रूप से उसको जाता हुआ देख रहे हो उसी प्रकार से तुम उसको आता हुआ देखे देगा और तुम आशीषित हो अगर तुम इस चीज को पहचान पाओ, अगर तुम अपने समय को पहचान पाओ तो तुम बहुत आशीषित हो। और इसका जो उद्देश्य है और प्रभु का जो उद्देश्य है ये भविष्यवाणी का जो वर्णन है, ये जो मैसेज है इसको अगर आप सम और ये प्रभु जो है अब्राहम इसहाक और याकूब का खुदा आपके साथ हो और आपको और इस्तेमाल करे और अपने शक्तिशाली वे में ये, और मैं आपसे सुनने में बड़ा इच्छुक रहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आमीन कहता हूँ।